नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए सीनियर रेजिडेंटशिप पॉलिसी लाएगी सरकार। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा, विकसित भारत जी राम जी योजना बदलेगी ग्रामीण भारत की तस्वीर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जेएनयू में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के खिलाफ नारेबाजी को बताया वामपंथी और कांग्रेस की हताशा। प्रदेश हाईकोर्ट में पंचायत और स्थानीय शहरी निकाय चुनावों को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। और प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी, 13 जनवरी तक शुष्क रहेगा मौसम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए सीनियर रेजिडेंटशिप पॉलिसी बनाएगी। इस पॉलिसी के तहत सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के पदों का युक्तिकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सीनियर रेजिडेंटशिप में जीडीओ डॉक्टरों का कोटा बढ़ाकर 66% किया जाएगा। अभी इसका अनुपात जीडीओ व सीधी भर्ती द्वारा 50% है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा, नाहन, हमीरपुर और नेरचौक मेडिकल कॉलेजों में नए विषयों में एमडी और एमएस की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत संरचना और सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पर्यटन विभाग की पहल दैट्स यू अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान राज्य की पर्यटन नीति में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। इसके तहत पारंपरिक दर्शनीय स्थलों तक सीमित पर्यटन से आगे बढ़ते हुए स्लो टूरिज्म की अवधारणा को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अभियान विशेष रूप से राज्य के प्रवेश द्वारों, हवाई अड्डों और हेरिटेज रेलवे स्टेशनों पर आने वाले पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार किया गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी योजना केवल रोजगार उपलब्ध करवाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस योजना के माध्यम से रोजगार को ग्रामीण विकास से जोड़ा गया है। भाजपा अध्यक्ष ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जी रामजी योजना से साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। इससे ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल जाएगी। इस मौके पर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज और मीडिया प्रभारी करण नंदा व रमा ठाकुर भी मौजूद रहे।
विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार व आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी विधेयक 2025। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। आज के भारत के दृष्टिगत इस योजना का सृजन किया गया। रोजगार का सृजन है, उसकी गारंटी है, उसके साथ ग्रामीण विकास को जोड़ा गया।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जी रामजी योजना से हिमाचल को सबसे अधिक फायदा होगा, क्योंकि इस योजना में हिमालयी राज्यों को 90:10 की दर से फंडिंग मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में मनरेगा के तहत प्रदेश में 32,60,000 रोजगार कार्य दिवस सृजित किए गए, जबकि यूपीए सरकार के कार्यकाल में महज 16,52,000 रोजगार कार्य दिवसों का ही सृजन हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस योजना का विरोध कर रही है।
ये केवल और केवल विकासोन्मुखी योजना है, ये राजनीति से प्रेरित होकर के बनाई गई योजना नहीं है। और हिमाचल प्रदेश को इस योजना को हाथों हाथ उठा करके ग्रामीण विकास के लिए प्रयोग प्रदेश सरकार की भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी केंद्र सरकार, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी।
चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी की शौर पंचायत के उप प्रधान निहाल सिंह भारद्वाज ने कहा है कि पंचायत में लगभग एक हफ्ते से बीएसएनएल की मोबाइल सेवा बंद हो जाने से पंचायत के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल का नेटवर्क न होने के कारण इस पंचायत के लोग पांगी घाटी सहित देश व प्रदेश के अन्य हिस्सों से संचार सुविधा से कट गए हैं। उन्होंने बीएसएनएल प्रबंधन व पांगी घाटी प्रशासन से मांग की है कि शौर पंचायत में लगे बीएसएनएल के टावर को तुरंत दुरुस्त किया जाए ताकि पंचायत की जनता को संचार सुविधा मिल सके। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में, पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि जेएनयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी वामपंथी और कांग्रेस की हताशा का प्रतीक है। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह देशवासियों के दिलों में बसते हैं और अपशब्द कहने वालों को अब देश जवाब देगा। उन्होंने इस घटना को सोची समझी साजिश करार दिया और कहा कि वामपंथियों व कांग्रेस ने सत्ता व जनसमर्थन से दूर होने के कारण नैतिकता, मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्यों को पूरी तरह से त्याग दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस प्रकार की गतिविधियां न केवल निंदनीय हैं बल्कि देश की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं की गरिमा को भी ठेस पहुंचाने वाली है। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए राज्य में स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। चंद्र कुमार आज सिविल अस्पताल ज्वाली में डॉक्टरों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में बोल रहे थे। प्रदेश में पंचायत और स्थानीय शहरी निकाय चुनावों को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर चल रही सुनवाई आज पूरी हो गई। ये सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की अदालत में हुई। इस मामले में आज वरिष्ठ अधिवक्ता श्रवण डोगरा ने सरकार का पक्ष रखा। मामले पर दोनों ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने इस संबंध में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि खेल युवाओं के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम है और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर धूमल आज हमीरपुर के समीरपुर में अपने निवास स्थान पर उनसे मिलने आए हिमाचल प्रदेश कबड्डी संघ के पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। प्रदेश कबड्डी संघ के अध्यक्ष राजकुमार निट्टू ने इस मौके पर कहा कि संघ प्रदेश भर में इस खेल को लोकप्रिय बनाने, युवाओं को नशे से दूर रखने और उभरती प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। राजपूत सभा हमीरपुर ने राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जारी की गई अधिसूचना का कड़ा विरोध किया है। महासभा के महासचिव जोगेंद्र ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और आयोग को इस अधिसूचना को वापस लेने के आदेश जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में आवेदन फीस की राशि में जातियों के आधार पर असमानता रखी गई है जो सही नहीं है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना रहा। पिछले कल राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हुई हल्की बर्फबारी के बाद प्रदेश में ठंड का प्रकोप और बढ़ गया है। आज प्रदेश के 15 प्रमुख स्थानों पर न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया है। ताबो आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां न्यूनतम तापमान -9.4 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश के निचले जिलों ऊना, बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन व सिरमौर के कई क्षेत्रों में लोगों को सुबह शाम घने कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 13 जनवरी तक प्रदेश में मौसम के साफ बने रहने और मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए सीनियर रेजिडेंटशिप पॉलिसी लाएगी सरकार। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा, विकसित भारत जी राम जी योजना बदलेगी ग्रामीण भारत की तस्वीर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जेएनयू में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी को बताया वामपंथी और कांग्रेस की हताशा। प्रदेश हाईकोर्ट में पंचायत और स्थानीय शहरी निकाय चुनावों को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। और प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी, 13 जनवरी तक शुष्क रहेगा मौसम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।